आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप सब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 151। सो स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 151 हियर वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक 13.5 दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था कि हम किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम डिवाइस, फॉर एग्जांपल ओडोमीटर फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, स्पीडोमीटर फॉर मेजरिंग स्पीड। ये स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर की हमने एक एप्लीकेशन भी देखी थी कि ये व्हीकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार के स्टीयरिंग के पास होते हैं, देन मोटरसाइकिल और आपकी जो स्कूटीज होती है इनके हैंडल के वहाँ पर भी ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर लगे होते हैं जो हमें स्पीड को मेजर करके बताते हैं एंड कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। सो आज का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली ये टॉपिक के अंदर हम ग्राफ पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डिस्टेंस और टाइम दोनों कंपोनेंट्स की मदद से किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम स्पीड को हर जगह कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और कंसेक्यूटिव स्पीड की जो मेजरमेंट्स है उनको वहां पर प्लेस्ड कर दें या फिर मार्क करें ग्राफ के अंदर, तो हमें उस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर किसी भी इंस्टेंट टाइम के ऊपर अगर स्पीड निकालनी है तो वी कैन फाइंड दैट स्पीड। तो इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है स्पीड को कैलकुलेट करना। तो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग। द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज अ बार ग्राफ। अगर आप ध्यान से फिगर 13.8 में देखें तो ये यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस टाइप के ग्राफ को हम बार ग्राफ बोलते हैं। Another type of graphical representation is a pie chart, which you can see in figure 13.9. अब यहाँ पर एक और तरह का ग्राफ है, figure 13.9 में, on the very next page, इस टाइप के ग्राफ को हम pie chart बोलते हैं। The graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph. उसके बाद figure 13.10 में जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। और जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं ये भी लाइन ग्राफ का ही एक एग्जांपल है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इस ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ two lines perpendicular to each other on it as shown in figure 13.11. mark this horizontal line as xox' it is known as the x axis. similarly mark the vertical line yoy' it is called the y axis. The point of intersection of xox' and yoy' is known as the origin, that is O. The two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. We showed the positive values on the x-axis along OX. Similarly, positive values on the y-axis are shown along OY. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantities. Therefore, we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13.11. तो बच्चों, जैसा कि आप figure 13.11 में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आपने सिक्स क्लास में पढ़ाई होगा ये कंसेप्ट। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हम उन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है, बेसिकली ये दो एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। वन इज एक्स एक्सिस द हॉरिजॉन्टल वन एंड अनदर इज वाई एक्सिस द वर्टिकल वन। अगर आप फिगर 13.11 में देखें, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल या फिर स्लीपिंग लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और यहां पर हम ओ टू एक्स एंड ओ टू वाई इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करते हैं, और ओ वाई डैश एंड ओ एक्स डैश पर हम नेगेटिव वैल्यूज प्लेस करते हैं। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस एक पॉजिटिव वैल्यू है और टाइम भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए हम ग्राफ के अंदर सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन को ही कंसीडर करेंगे। हम बस इन्हीं सेक्शन के अंदर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर जो शेडेड रीजन है डेट इज पिंक कलर, हम यहीं पर अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिकॉज डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज। भोजो एंड पहेली फाउंड कट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस। देयर डेटा इज शोन इन टेबल 13.6। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। फर्स्ट, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड mark them as OX and OY as in figure 13.11. Second, decide the quantity to be shown along the X-axis and that to be shown along the Y-axis. In this case, we show the time along the X-axis and the distance along the Y-axis. Basically, bachcho, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहां पर टेबल 13.6 है द मोशन ऑफ अ कार। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है डेट इज टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। इस डेटा की मदद से या फिर इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपने ग्राफ पेपर लेकर उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है और उनको अपने एक्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दैट इज वन इज एक्स एक्सिस एंड द अनदर इज वाई एक्सिस, जैसा कि हमने फिगर 13.11 में देखा है। सेकंड पॉइंट, आपने ये डिसाइड करना है कि कौन से एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल On x-axis आप represent कर सकते हैं time and on y-axis आप represent कर सकते हैं distance, जो कि आप figure 13.12 में देख सकते हैं। After that, choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For the motion of the car, scales could be time 1 minute is equals to 1 centimeter, distance 1 kilometer is equals to 1 centimeter. जैसा कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है, आप इस तरीके से ग्राफ के ऊपर अपनी रीडिंग्स को नोट डाउन कर सकते हैं एंड उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके साथ आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सिस पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे और एक एक्सिस पे टाइम, जो कि मैंने अभी पिछली पॉइंट में भी बताया है। इन फिगर 13.12, जैसे कि इस फिगर में है, y एक्सिस पर डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड x एक्सिस पर टाइम इन मिनट्स। ठीक इस तरीके से आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और अगर आप रीडिंग्स की बात करें तो ग्राफ पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिनट एंड डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सेम एज दैट आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ, सिमिलरली मार्क the distance 1 kilometer 2 kilometer on the y axis as you can see in figure 13.12। jaisa ki figure 13.12 mein drawn hai graph, same as that aapne bhi graph paper pe isi tarike ki readings ko note down karna hai। aapne scale ka dhyan rakhna hai ki x axis ke upar agar time hai to 1 centimeter ke baad aapne readings change karni hai, that is 1 minute, then 2 minute, then 3 minute। जैसे कि figure 13.12 में दिखाया है, यहाँ पर x axis के ऊपर time represent कर रखा है, starting from the origin, then 1 minute, 2 minute, 3 minute and onwards। ठीक इसी तरीके से y axis के ऊपर भी distance को represent कर रखा है, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer and इसी तरीके से आगे तक रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। सेम एज दैट आपने भी ये ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट सीरियल नंबर 1 इन टेबल 13.6 shows that at time 0 minute, the distance moved is also 0. The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. After 1 minute, the car has moved a distance of 1 kilometer. To mark this set of values, look for the point that represent 1 minute on the x-axis. Draw a line parallel to the y-axis at this point. Then draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding to distance 1 kilometer on the y-axis. The point where these two lines intersect represent this set of values on the graph, which you can see in figure 13.12. Similarly, mark on the graph paper the points corresponding to different sets of values. जैसे कि इस point में बताया है, same as that आपने अलग-अलग values के sets को graph के ऊपर represent करना है। For example, अगर हम figure 13.13 में देखें, तो यहाँ पर starting में जो origin है, that is O. Here, at the time interval 0 minute, the distance covered is 0 kilometer. तो ये point क्या represent कर रहा है? कि 0 time period पर 0 distance cover किया गया. अगर हम 1 minute बाद की बात करें, तो at the time 1 minute, the distance covered is 1 kilometer. यहाँ पर x axis के ऊपर जो 1 minute है, हमने यहाँ से एक perpendicular line draw करनी है. Then उसके बाद डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या फिर कट करेगी, दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट दैट एट द टाइम इंटरवल 1 मिनट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज दैट Now, if we talk about the time interval 2 minute, तो अगर हम x axis के ऊपर 2 minutes की बात करें, तो यहाँ से हम एक perpendicular line draw करेंगे, then इसके correspondence में जितना डिस्टेंस कवर्ड है, यहाँ पर जैसे 2 किलोमीटर है तो हम 2 किलोमीटर वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड सेम द पॉइंट एट विच बोथ द परपेंडिकुलर लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट दैट एट द टाइम इंटरवल 2 मिनट्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। इस तरीके से हम ग्राफ को रीड करते हैं और हमारी अलग अलग वैल्यूज को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिगर 13.12 शोज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू पोजीशंस ऑफ द कार एट वेरियस टाइम्स। जैसे कि फिगर 13.12 में बताया है, जो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर मार्क करे हैं ग्राफ के ऊपर, ये बेसिकली बताते हैं कि एट डिफरेंट टाइम इंटरवल और एट डिफरेंट टाइम पीरियड हमारे कार की पोजीशन क्या थी। जैसे 1 मिनट पर जो हमारी कार थी वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी, एट 2 मिनट्स इट वॉज एट 2 किलोमीटर। सेम एज दैट आगे हम और भी वैल्यूज जब मार्क कर देंगे तो वो भी हमें यही रिप्रेजेंट करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, join all the points on the graph as shown in figure 13.13. it is a straight line. this is the distance time graph for the motion of the car. now हमने ये जितने भी points mark करे हैं graph paper के ऊपर, आपने इन सभी points को इनके ऊपर एक line draw कर देनी है, इन सभी points को join कर देना है। उसके बाद resulting जो भी line form होगी वो आपका लाइन ग्राफ होगा फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी दैट विल बी योर रिजल्टिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि डिस्टेंस टाइम के साथ साथ स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। हाउएवर if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any other shape. जैसा कि इस पॉइंट में लिखा है, आप प्लीज इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल पॉइंट, कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसकी स्पीड बार बार चेंज नहीं हो रही है, इट रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट की या हमारे व्हीकल की स्पीड बार बार चेंज होगी, जैसे कि 1 मिनट पे 2 किलोमीटर, 2 मिनट पे 1 किलोमीटर, इस तरीके से अलग अलग रीडिंग्स आएगी, चेंज होती रहेगी, इट विल बी नॉट कॉन्स्टेंट, तब हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं होगा। उस टाइम पर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई अलग ही शेप शो करेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट एंड इट इज नॉट हैविंग लाइन ग्राफ व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नाउ जनरली the choice of scales is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13.13. we may have to choose 2 different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. let us try to understand this process with an example. basically jo humne piche wale examples mein और ये जो हमने अभी फिगर्स पढ़ी है, इनके अंदर जो हमने स्केल लिया है, दैट इज 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बेसिकली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम हमारी यूनिट्स को और उसी के साथ ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कराए गए स्केल को चेंज करते रहते हैं। जैसा कि आप फिगर 13.14 में देख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दी बस, यहाँ पर जो स्केल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर डिफरेंट है, द स्केल इज नॉट द सेम। लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट took Paheli and her friends to the picnic. The distance covered and time taken by the bus are shown in table 13.5. The total distance covered by the bus is 80 km. हम एक ऐसी बस की बात कर रहे हैं जिस बस में पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक गई थी। इस बस के अंदर जो डेटा दे रखा है या फिर ये बस अलग-अलग टाइम पीरियड पर कितना डिस्टेंस कवर करते हुए इसने अपनी जर्नी कंप्लीट करी, ये सारे इंफॉर्मेशन टेबल 13.5 में गिवन है। हम इसी इंफॉर्मेशन की मदद से एक न्यू ग्राफ बनाएंगे। The total distance covered by the bus is 80 किलोमीटर। बस ने टोटल 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। If we decide to choose a scale, 1 kilometer is equals to 1 centimeter. We shall have to draw an axis of length 80 centimeter. This is not possible on a sheet of paper. On the other hand, a scale 10 kilometer is equals to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter. This scale is quite convenient. जैसा कि आप पे लिखा है कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है या फिर जो भी शीट ऑफ पेपर है वो इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसके अंदर 80 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। अगर हम 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे और एक्सिस के ऊपर एट एवरी 1 सेंटीमीटर हम 1 किलोमीटर को ऐड करते जाएंगे और हमारी जो यूनिट्स होगी या फिर जो भी हम वहां पे मार्क करेंगे इट विल बी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एंड ऑनवर्ड्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसके लिए हमें 80 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी बिकॉज बस ने टोटल 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। देयरफॉर अगर हम कन्वीनियंस की बात करें तो इजी वे में अगर हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख दें और इस स्केल की मदद से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन वी हैव टू ड्रॉ ओनली अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर विच वुड बी वेरी इजी। हमारा ग्राफ पेपर इतना बड़ा होता है कि हम उसके ऊपर इजीली 8 सेंटीमीटर की लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं बट ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ 80 सेंटीमीटर इज नॉट कन्वीनियंट एंड पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर और ऑन आवर ग्राफ पेपर बिकॉज हमारा पेपर की लेंथ ही इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हमें अपने पेपर की लेंथ के हिसाब से और गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ स्केल है हमारी रीडिंग्स है उनको चेंज करना पड़ता है। हाउएवर द ग्राफ मे कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ पेपर। नाउ अगेन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ग्राफ पेपर को ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें क्या क्या पॉइंट्स या फिर क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है ताकि हम राइट स्केल को चूज करें और राइट स्केल को अपने ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करें ताकि जो हमारा ग्राफ है वो गलत ना हो जाए और जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो राइट वे में और कन्वीनियंट वे में सबको समझ आए। फर्स्ट पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है और जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना है। सेकेंड पॉइंट द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल चूजन इट इज कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूज ऑन द ग्राफ। जो भी हमें वैल्यूज गिवन है क्वांटिटी की उसके इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है हमें उन्हें ध्यान रखना है। जैसे कि टेबल 13.6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 and 5 एक सीक्वेंस में यहाँ पर हमें रीडिंग्स दे रखी है लेकिन कई बार क्या होता है ऊपर की और लास्ट की यानी स्टार्टिंग एंड लास्ट की जो रीडिंग्स है वो सीक्वेंस में होती है लेकिन जो बीच की रीडिंग्स है वो अनसीक्वेंस होती है यानी वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होती। तो ये हमें सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान रखना है डैट जो भी हमें रीडिंग्स प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो इंटरमीडिएट वैल्यूज का सीक्वेंस में है Now, so that with the scale chosen, ताकि अगर हम कोई भी स्केल चूज करें तो इट विल बी कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूज ऑन द ग्राफ, ताकि हम अपनी वैल्यूज को एक कन्वीनियंट वे में ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है, नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, देन वी हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाइल ड्रॉइंग अ ग्राफ और व्हाइल रिप्रेजेंटिंग एनी वैल्यूज ऑफ एनी क्वांटिटी ऑन अ ग्राफ पेपर, वी हैव टू यूटिलाइज द होल ग्राफ पेपर एट अ टाइम. हमें ग्राफ पेपर को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. अगर हम ग्राफ पेपर को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे तो जो हमारा ग्राफ है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, एक तो वो नीट एंड क्लीन होगी, वो हर एक पर्सन को समझ में आएगी. एवरीवन शुड इजीली अंडरस्टैंड दैट गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑन एनी ग्राफ पेपर. सो इसी तरीके से हमें अपने ग्राफ पेपर को रिप्रेजेंट करना है, अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को एंड वैल्यूज को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है. सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर. वन ऑफ दी स्केल्स which meets the above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be distance 5 km will be equal to 1 cm and time 6 minutes will be equal to 1 cm. Now, agar hum baat kare ki hume graph paper de rakha hai jiski length 25 cm hai aur breadth bhi 25 cm hai. Aur agar hum readings ki baat kare ya fir वैल्यूज की बात करें तो जो वैल्यूज हमें टेबल 13.5 में दी गई है, हमें सेम वैल्यूज को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. सो इन दैट केस अगर हम अपने स्केल की बात करें तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जो हमारा बेस्ट और सूटेबल एंड कन्वीनियंट स्केल जो है, इट विल बी जहां पर हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखेंगे एंड 6 मिनट टाइम विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो इसी तरीके से हमें अपने स्केल को डिसाइड करना है. कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस? इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.13? तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखे एंड कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, नाउ कैन यू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बना सकते हैं उन रीडिंग्स को यूज करके जो कि टेबल 13.5 में बस के मोशन के रिगार्डिंग दे रखी है? क्या जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो फिगर 13.13 के सिमिलर है? नाउ अगर आपने सही तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करा है तो आपकी फिगर उस फिगर से मैच करेगी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by a table. For example, table 13.5 give information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals. On the other hand, from the distance time graph, we can find the distance moved by the bus at any instant of time. Please underline this line. यहां पर लिखा गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्हीकल की वो इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं जो कि टेबल में नहीं दी रखी. सच एज हम अगर बात करें टेबल 13.5 की, नाउ व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम रीडिंग्स देन वी कैन एबल टू कैलकुलेट द स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन of a particular instant of time of the bus motion. Bus चल रही है, उसके किसी भी instant of time पे अगर हमें speed calculate करनी है या फिर distance covered find करना है तो हम graph की मदद से बहुत ही easily find कर सकते हैं. Suppose we want to know how much distance the bus had travelled at 8:15 a.m. We mark the point corresponding to the time 8:15 a.m. on the x-axis. Suppose this point is A. नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए. वी देन मार्क द पॉइंट टी ऑन द ग्राफ एट विच दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट इट. नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी. The distance corresponding to the point B on the y-axis OB give us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 a.m. How much is this distance in kilometer? Can you now help Paheli to find the distance moved by the bus at 9:45 a.m.? Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम ग्राफ में देखें इन फिगर 13.14, तो इसके अंदर अगर हमें 8:15 एएम की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है वी कैन फाइंड दैट. अगर हमें 8:45 एएम की फाइंड करनी है वी कैन फाइंड दैट. अगर हमें 9:15 की फाइंड करनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी वे टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट द वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है एंड आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है. आपका होमवर्क है, आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके एग्जाम्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा. तो बच्चों इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.